તારીખ 10/12/1989 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 357 અને 358 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 101
પાનું 325 બીજા પેરેગ્રાફથી ચાલે છે. સૌભાગ્ય ભાઈ ઉપરનો પત્ર છે. સત્સંગ થવાનો પ્રસંગ ઈચ્છીએ છીએ, પણ ઉપાધિ યોગનો જે ઉદય તે પણ વેદવા વિના ઉપાય નથી. અભિપ્રાય તો સાંસારિક પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત થવાનો છે, પણ પૂર્વકર્મને અનુસરવા સિવાય બીજો ઉપાય પોતે જોતા નથી. ચિત્ત ઘણીવાર તમ પ્રત્યે રહ્યા કરે છે, એટલે સૌભાગ્યભાઈના સમાગમમાં સત્સંગમાં રહેવાનો. જગતમાં બીજા પદાર્થો તો અમને કઈ રૂચિના કારણ રહ્યા નથી, આ સ્પષ્ટ વાત લખે છે. આગળ લખી ગયા છે, ધંધો વેપાર કુટુંબ પરિવાર શરીર સુદ્ધા, પોતાના શરીરની સાવધાની સુદ્ધા પણ એ રુચિ નથી, એટલે સાવધાની નથી. રુચિ હોય ત્યાં સાવધાની અને જાગૃતિ આવ્યા વિના રહેતી નથી. જે કાંઈ રુચિ રહી છે તે માત્ર એક સત્યનું ધ્યાન કરનારા એવા સંત પ્રત્યે, જેમાં આત્માને વર્યું છે એવા સત્શાસ્ત્ર પ્રત્યે, અને પરીક્ષા એ પરમાર્થના નિમિત્ત કારણ એવા દાનાદિ પ્રત્યે રહી છે. એમાં એક બીજો શબ્દ વાપર્યો છે, પરીક્ષા. ફરીથી શું કહે છે કે જગતમાં તો કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે અમને રુચિ રહી નથી. 25 વર્ષની યુવાન અવસ્થામાં આ પત્ર લખેલો છે. 1.5 વર્ષ પહેલા લગભગ ચૈત્ર મહિનાનો પત્ર છે ને, 1.5 વર્ષ પહેલા એમને આત્મજ્ઞાન થયું છે. આત્મજ્ઞાન થયું છે એટલે સર્વસ્વપણે પોતાના આત્માની ઉપાસના કરીને રાગ દ્વેષ રહિત પરિપૂર્ણ વિતરાગ દશાને પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય છે. એ બાજુ તીવ્ર રસથી અને તીવ્ર વેગથી પરિણામ કામ કરતા થયા છે. એ પરિસ્થિતિમાં લખે છે કે જગતના બીજા પદાર્થો અમને કાંઈ રુચિના કારણ નથી રહ્યા. બીજા કોઈ પદાર્થો અમને રુચિના કારણ નથી. બહારના કોઈ પદાર્થોને વિશે થોડો પણ ઉપયોગ દેવા જેવું લાગે છે તો એ એટલું છે કે કોઈ સત્યનું ધ્યાન કરનારા એવા સંત પ્રત્યે અમારું લક્ષ જાય છે. પરમ સત્યને ધ્યેય બનાવીને એના ધ્યાનમાં રહેનારા એવા સંત પ્રત્યે અમારી રુચિ છે, એમના પ્રત્યે અમારો અનુરાગ છે. જેમાં વિતરાગ તત્વ એવો આત્મા, આત્મા એટલે વિતરાગ તત્વ, જ્ઞાન તત્વ એવો જે આત્મા, એ જેમાં વર્ણ્યું છે એવા સત્શાસ્ત્રો પ્રત્યે એનું વર્ણન છે. આત્માના મૂળ તત્વનું, મૂળ સ્વરૂપનું જેમાં વર્ણન છે એવા સત્શાસ્ત્રો પ્રત્યે અનુરાગ છે, અને દાનાદિ પ્રત્યે જે કંઈ અમારું વલણ છે એ પરમાર્થમાં નિમિત્ત કારણ હોય એવા દાન પ્રત્યે, એમાં બે વાત કરી છે. અચ્છા, હિન્દી છે ને પુસ્તક, એ હિન્દી છે, મારા અનુવાદ કરતા જોવો પડશે.
જો કુછ રુચિ રહી હૈ
वो मात्र एक सत्य का ध्यान करने वाले संत में जिसमें आत्मा का वर्णन किया है ऐसे सत्शास्त्र में और परीक्षा से परमार्थ के निमित्त कारण ऐसे दानादि में रही है। हमारी रुचि बाहर में ऐसे तीन निमित्त के अलावा किसी और के प्रति नहीं है। तो संत है वो तो प्रत्यक्ष समागम करने योग्य है, सत्शास्त्र भी अध्ययन करने योग्य है सम्यक प्रकार से, और दान में ऐसे दान करने में रुचि रही है कि जो परमार्थ के निमित्त कारण हो ऐसे दान में, इधर उधर कोई दान करने की रुचि नहीं है। दान करने वाले को दान करने में विवेक होना चाहिए, वरना उस दान का दान से प्राप्त जो संपत्ति है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और ये दुरुपयोग ऐसा तो कहीं भी नहीं होना चाहिए कि जैसे अज्ञान और मिथ्यात्व की पुष्टि हो, मिथ्यात्व और अज्ञान को पोषण मिले ऐसे निमित्तों में तो दान नहीं देना चाहिए। वो परमार्थ के निमित्त भूत नहीं है, ये लौकिक कार्य है, हॉस्पिटल है, गौशाला है, पांजरा फोड़ है, ये सब परमार्थ के निमित्त कारण है। ऐसी जगह पे दान देना में हमारी रुचि है और वो भी परीक्षा से, दूसरों की इच्छा से, पर मैंने दूसरा, हमको ऐसी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए कि वो खुद ही तो सर्वसंग परित्याग करने के अभिप्राय में आ गए हैं, तो खुद ही मुनि दीक्षा लेने के अभिप्राय में आ गए हैं। तो जहां तक व्यवहार में खड़े हैं, व्यवसाय में खड़े हैं और पैसा का कमाई का साधन में लगे हुए हैं व्यापार आदि में, तो वहां तक कोई दान का विकल्प है? वो भी कोई कहते हैं कि वहां इधर दान देने योग्य है, ऐसा कोई बताते हैं? तो हम ये देख लेते हैं कि कोई परमार्थ के निमित्त कारण है कि नहीं है। जैसे सत्शास्त्र का प्रकाशन होता है तो उसमें परमार्थ का निमित्त है, जैसे जिन मंदिर होता है तो उसमें भी पारमार्थिक निमित्त है, और ऐसे कोई देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रसंग हो, उत्सव हो, महोत्सव हो, तो उसमें परीक्षा के अनुसार दान देते हैं। स्व इच्छा और परीक्षा में क्या फर्क पड़ता है इसका यदि विचार किया जाए तो उसमें यही बात रहती है कि जिसको दान देने का अभिप्राय हो जाता है उसको तो साथ ही उस दान के लिए पैसे ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त करे ऐसा भी अभिप्राय स्वयं हो जाता है, कमाने का अभिप्राय हो जाता है। तो ज्यादा कमाए और ज्यादा खर्च करे, ज्यादा कमाए और ज्यादा खर्च करे, ये दो बात साथ में रहेगी। कमाए नहीं और खर्च करे ये बात तो कैसे साथ में रहेगी, वो तो साथ में रह ही नहीं सकते। कोई छोटी सी बात में खुद का कितना सूक्ष्म विवेक है कि उसमें जो रुचि है दानादि में वो तो परीक्षा से, परमार्थ के जो निमित्त कारण है ऐसे स्थान में ही दान देने की रुचि रही है। हमारी आत्मा तो कृतार्थ प्रतीत होता है, आत्मा तो हमारा जो है वो बिल्कुल कृतार्थ है। कृतार्थ मैंने कुछ करने का जिसमें बाकी नहीं, शेष नहीं, कुछ करने का अवशेष नहीं, कृतकृत है हमारा आत्मा, परिपूर्ण शुद्ध कृतकृत है आत्मा। में कुछ करने का, मेरे स्वरूप में तो कुछ करने का सवाल ही नहीं होता है, वर्तमान में ही कृतकृत हूं। ये जो अभिप्राय द्रव्य दृष्टि में बार बार आता है पत्र में कि वर्तमान में ही मैं कृतिकृत हूं, ऐसे ही हमारे आत्मा के विषय में तो यही हालत है। परिणाम के विषय में दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक तो ऐसे आत्मा के साथ श्रद्धा ज्ञान चारित्र के परिणाम है, दूसरे कुछ बाह्य वृत्ति है तो कहीं भी हमारी रुचि नहीं लगती। सिवा ये तीन बात कही कि अगर कोई हमें संत मिल जाए, ज्ञानी पुरुष कोई मिल जाए, कोई मुनिराज आचार्य मिल जाए तो वहां हमारी रुचि है, या तो सत्शास्त्र में है या तो परीक्षा से कोई दान करने में। ये एक परम श्रुत प्रभावक मंडल नाम की संस्था उन्होंने शुरू की थी अपने उपस्थिति में, आज भी बंबई में जगरी बाजार में जहां वो व्यापार करते थे वहीं उनका कार्यालय आज भी है, परम श्रुत प्रभावक मंडल। इस संस्था में सत्सुत का प्रकाशन, सत्शास्त्रों का प्रकाशन करने की एकमात्र प्रवृत्ति थी, जो आज भी कुछ अंश में चालू है। तो ऐसी जगह पे दान देने का भी भाव आता है, उसकी भी मर्यादा इस प्रकार की है। हाँ, सभी अपात्र दान का निषेध कर दिया है मां, अपात्र को दान देने से ये दान का जो उपयोग होता है वो सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग हो जाता है। हाँ, श्रद्धा का दोष भी इसमें आता है, क्योंकि उसकी समर्पण श्रद्धा है वो खुद ही समर्पण करने के में सहायक होती है, और दान भी एक प्रकार का समर्पण है। तो जहां जो जीव दान देता है वहां उनका समर्पण है, वहां उनकी श्रद्धा है, वहीं दान देता है। मैंने दान देता है जो कोई आदमी तो ऐसा सोचता है कि इधर दान देने योग्य है, ये कार्य करने योग्य है, इसका ऐसा अभिप्राय और श्रद्धा दोनों रहता है, तभी तो समर्पण करता है। इसलिए उसके साथ श्रद्धा का संबंध रहता है। इसलिए दान देने वाले को कुछ जांच करके, कुछ सोच समझ करके दान देना चाहिए, बस दे दो कहीं भी दे दो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिना गम में है ही नहीं, चार संघ के अलावा मैंने ये पांजरापुर सब निकल गया, इसमें हॉस्पिटल आदि सब निकल गया, अन्य मत के सभी स्थान निकल गए, इसमें से तो कोई बाकी नहीं रहा। चार दान चार प्रकार का और चार संघ को दीजिए, बस इसके अलावा कोई दान का क्षेत्र नहीं रहा। और संघ में भी ये देखना है कौन उचित है दान के लेने के, कौन उचित है उनको देखना है। वैसे कोई ये भी सोचेंगे कि ये पांजरापुर आदि की बात नहीं चलती है, तो इसमें ये अभिप्राय नहीं है कहने का कि कोई अनुकंपा का त्याग है, ऐसी कोई बात इसमें नहीं लेनी है। ये स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि धर्म के क्षेत्र में आने वाले को अनुकंपा तो अवश्य होती ही है, और जब जब अनुकंपा का परिणाम उदयगत होता है तब कैसे भी अनुकंपा के परिणाम वश कोई दानादि का कार्य हो भी जाता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। फिर भी विचार और अभिप्राय में बात साफ है कि दान देने के उतने ही क्षेत्र है,
अनुकंपा अलग
बात अलग बात है। तो दो बात में ऐसा कोई घोटाला नहीं होना चाहिए कि वहां अनुकंपा का त्याग करने की कोई बात है, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि धर्म धार्मिक परिणाम में कोमलता अनुकंपा ये सहज होती है, और कठोरता आदि का वहां परिणाम ऐसे नहीं होते हैं, ये धार्मिक क्षेत्र में सहज है। वो आहार दान है, औषध दान है, शास्त्र दान है और अभय दान है। अभय दान है भय का निवारण करे, धर्म और धर्मात्मा कुछ भय में आवे तो उसका निवारण करे, उसको संरक्षण करने का भाव आता है। ऐसे ही सहज है इस विषय में। उसका स्थान तो नक्की हो गया, चार संघ को दान दीजिए। पांजरा पुल चार संघ में आती है क्या? हाँ आती है। चार संघ को चार प्रकार का दान देने की आगम्य विधान है, फरमान है, उसी के अनुसार ये क्षेत्र और ये कार्य की मर्यादा है। ये 357 पत्र हुआ, 358 जगत के अभिप्राय को देख करके जीव ने पदार्थ का बोध पाया है। ज्ञानी के अभिप्राय की ओर देखकर पाया नहीं है। जिस जीव ने ज्ञानी के अभिप्राय से बोध पाया है उस जीव को सम्यक दर्शन होता है, उस जीव को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ये बात शास्त्र में ढूंढने जावे तो मिले नहीं, ऐसी बात है। कितनी बात अपने अनुभव से ऐसी की है धर्मात्माओं ने कि शास्त्र में ढूंढने जावे तो ऐसी बात मिले नहीं, क्योंकि शास्त्र बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और जो भी है उसमें भी कहां कौन सी बात पड़ी है ये तो सबको मालूम भी नहीं रहती। तो जीव धार्मिक क्षेत्र में प्रवृत्ति करता है तो जो कुछ उपदेश उनको मिला है, जो उपदेश उन्हें पाया है, उसी के अनुसार वो करता है। यहां श्रीमद जी ने एक बहुत सुंदर बात की, वो यह है कि तू कुछ भी प्रवृत्ति करता हो, धार्मिक प्रवृत्ति कुछ भी तेरी हो, जरा अंदर में अंतर में झांक करके देख लेना, तलाश कर लेना, चौकसी कर लेना कि किस अभिप्राय से तेरी दृष्टि कहाँ है। जगत पर, समाज पर तेरी दृष्टि है या कोई ज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार कोई काम हो रहा है। प्राय धर्म के क्षेत्र में जो भी प्रवृत्ति करने में आती है उसमें जीव की नजर समाज पर ही रहती है, लोक संज्ञा पूर्वक ही धार्मिक प्रवृत्ति चलती है करीब करीब हर जगह पर। तो इसका निषेध है और बहुत कड़ा निषेध है इसका, कि ऐसा काम करने से लोग में, समाज में कैसा एक दिखाव होगा, कैसा हमारा इंप्रेशन होगा और हमारी स्थिति कैसे रहेगी। ये जगत को मुख्य करके, समाज को मुख्य करके ही करीब करीब हर जगह ये धार्मिक प्रवृत्ति चलती है और लोग करते हैं, मानते हैं कि हम धर्म के कार्य करते हैं। वास्तव में ऐसी प्रवृत्ति करने वाले अपने आप को ही नुकसान करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो ज्ञानी के अभिप्राय की ओर देख कर नहीं पाया है, इसमें ज्ञानी का अभिप्राय क्या है ऐसा कभी उसने देखा नहीं, इस बात का उसको विचार भी नहीं, और ज्ञानी का अभिप्राय कहां कहां कैसा होता है उसका पता ही नहीं, क्योंकि कभी ज्ञानी को पहचाना नहीं और न ज्ञानी को पहचान करके संग किया है, समागम किया है, इसलिए उसका अभिप्राय का भी पता नहीं। तो जब मूल में ही ज्ञानी का अभिप्राय से ही अनजान है, अनभिज्ञ है, इस परिस्थिति में क्या होगा? धार्मिक प्रवृत्ति करने वाले की परिस्थिति क्या होगी? कि वो अनिवार्य रूप से लोक संज्ञा में पड़ा हुआ जीव लोक संज्ञा वश ही प्रवृत्ति करेगा। हर प्रवृत्ति में उसकी नजर लोगों के प्रति चली जाएगी कि ऐसा क्या करते हैं तो लोगों को क्या लगेगा, हमारे विषय में लोग क्या अभिप्राय रखेंगे, हमारे विषय में क्या सोचेंगे। ये बात आए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि ये अनादि से लोक संज्ञा पड़ी है। तो ये लोक संज्ञा बस जो प्रवृत्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति है, उसका निषेध है। भले ही धार्मिक प्रवृत्ति नहीं हो, बाहर में इसका कोई इतना अफसोस नहीं होना चाहिए और इसमें इसका इतना मानना नहीं है, किंतु जो भी हो वो आत्मा को लक्ष्य में रखकर और ज्ञानी की आज्ञा के अनुसार ही करे, यही धार्मिक प्रवृत्ति का एक सिद्धांत हो जाना चाहिए मुमुक्षु के लिए। तो एक तो वर्तमान में ज्ञानी ही क्वचित होते हैं, कोई एक दो होते हैं, इससे ज्यादा तो मिलना ही मुश्किल है। और जो अनादि से लोक संज्ञा में पड़ा है, जो कुछ भी करता है वो लोगों की नजर का हिसाब किताब लगा के ही सब प्रवृत्ति करता है, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसको धर्म की प्राप्ति होने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई अवकाश नहीं। और जिस जीव ने ज्ञानी के अभिप्राय से बोध पाया है, उस जीव को सम्यक दर्शन होता है, उसको ही सम्यक दर्शन होगा, दूसरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो फिर तो संसार तो खड़ा ही है। सम्यक दर्शन तो एक ऐसी चीज है कि जो आगे का जन्म मरण को रोक देती है। हाँ, वो तो पात्रता है ही, ज्ञानी को अनुसरण करना वो एक पात्रता का लक्षण है, और उससे विमुख जाना, उपेक्षा करना, वो अपात्रता का लक्षण है। ये बात तो जरूर है, वो तो है ही। तो यहाँ ये बात थोड़ा बड़ा अक्षर में इसलिए ली है कि ये पत्र का हेडिंग मथाला लिया है। पत्र किसको लिखा है? शायद अंबालाल भाई को लिखा, अंबालाल भाई को लिखा है। तो ये खंभात के जो मुमुक्षु लोग थे उनके परिचय में आए। धर्म प्राप्त करने का, बोध प्राप्त करने का अभिप्राय से वो परिचय में आए थे, तो उनको एक लाल बत्ती, रेड लाइट रख दी। आप लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें समाज के प्रति ध्यान कितना जाता है और ज्ञानी के प्रति ध्यान कितना जाता है, थोड़ा मिलान कर लेना। अनादि से जो भी किया है वो जगत के अभिप्राय को सामने रख करके किया है कि जगत में ये बुरा लगेगा तो समाज को अच्छा लगेगा, या समाज को अच्छा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा, यही बात को सामने रख करके ही जीव ने बोध ग्रहण किया है और जो कुछ प्रवृत्ति किया है वो उसी कारण से ही किया है। अब ये इस बात को बिल्कुल छोड़ करके एक ज्ञानी के अभिप्राय से ही काम करने का और बोध ग्रहण करने का जिसका अभिप्राय है, उसी को ही धर्म की प्राप्ति होगी, उसी को ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उसी को ही कर्म का नाश होगा, उसी की मुक्ति होगी और उसका उस आत्मा को ही सुख शांति मिलेगी, दूसरे को सुख शांति नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी सैद्धांतिक बात की है यहाँ पर। विचार सागर अनुक्रम से मैंने प्रारंभ से अंत तक विचार करने का अभ्यास अभी हो सके तो करना योग्य है। ये विचार सागर कोई उत्तर हिंदुस्तान में महात्मा निश्चल दास जी करके कोई अन्य मति हुए हैं, इनका लिखा हुआ ग्रंथ है, हमने देखा है। वो जब देखा था उस समय में तो हमारे हाथ में वो जैन दर्शन का शास्त्र नहीं आया था, उसी समय में वो देखा था। तो उस वक्त तो ये तत्व के विषय में विचार करने की शक्ति भी इतनी नहीं थी, तो ऐसे एक छाप हुई थी कि ये बहुत सूक्ष्म विषय है। फिर भी विचार सागर पढ़ते उतना ध्यान तो जरूर गया था कि ये कोई ऐसी दुनिया है, नई दुनिया है, नया जगत है कि जहां भावों का आंदोलन है और उस आंदोलन में बहुत सा वैविध्य है, विविधता है और बहुत सी बातें हैं। एक कोई नया जगत है, नई दुनिया है और बहुत सूक्ष्म होती है ये भावों का विषय, तो उसमें तो काफी परिश्रम करने से ही कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ऐसा कोई तत्व ज्ञान का विषय सूक्ष्म चलाया है ग्रंथकर्ता ने, तो ये तात्विक विषय की सूक्ष्मता के कारण से शायद यहाँ पर अम्बालाल वगैरह को कहा है कि आप उनका अभ्यास करना प्रारंभ से लेकर अंत तक कर। भले ही शास्त्र अन्य मति का है, ग्रंथ अन्य मति का है, फिर भी पढ़ने के लिए सूचना कर दी है कि आप उसको पढ़ो। हम दो प्रकार का मार्ग जानते हैं, एक उपदेश प्राप्ति का मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग। बहुत श्रीमद् जी का नजर जो है ये मार्ग के विषय में बहुत साफ है। जो दूसरा वास्तविक मार्ग है वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप चतुर्थ गुण स्थान के लेकर के आगे आगे के गुण स्थान में जो प्रवर्तित है, ऐसे परिणामों को वास्तविक मार्ग कहते हैं, जिन मार्ग कहते हैं, राजमार्ग कहते हैं आत्मा की मुक्ति का। और इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो कुछ है पूर्व भूमि का, उसको उपदेश प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। दो मार्ग बतलाए मैंने, मार्ग मैंने कार्य पद्धति, मार्ग मैंने विधि। तो ये मार्ग का दो विभाग कर दिया कि एक तो ज्ञानियों को मार्ग मिला है, वो तो चतुर्थ गुण स्थान के लेकर के आगे जितना जितना स्वयं का पुरुषार्थ है उसी के अनुसार वो मोक्ष मार्ग में विचरते हैं, ये तो वास्तविक मार्ग है। दूसरा जो उस मार्ग में नहीं आए हैं उनके लिए क्या है कि उनके लिए उसकी प्राप्ति का जो उपाय, प्राप्ति की जो विधि, उसको भी मार्ग कहते हैं। मैंने मुमुक्षु की भूमिका में जीव मार्ग बदलता है और मार्ग बदलने से वो मार्ग को प्राप्त करता है। अनादि से जिस मार्ग पर वो चल रहा है उसी मार्ग पर वो चलता रहे तो कहीं मोक्ष मार्ग आने का, मिलने का कोई मौका नहीं है, कोई अवसर नहीं है। तो उसको मार्ग जो बदलना है, मुमुक्षु की भूमिका से मार्ग बदलना है, उसको उपदेश प्राप्ति का मार्ग कहते हैं, आत्महित का मार्ग कहते हैं। ये नजर बहुत साफ है लिखने वाले के कि उसने सारे मार्ग को दो टुकड़ों में बांट दिया कि एक तो मुमुक्षु के लिए क्या करना चाहिए और एक तो मोक्ष मार्ग में जो विचरने वाले धर्मात्मा है उनका मार्ग कार्य पद्धति कैसे होनी चाहिए। बस उसमें सारी बात पूरी हो जाती है प्रारंभ से लेकर अंत तक। एक वचन में कितनी बात लिखी है, इसलिए इस बात को लिखे कि विचार सागर उपदेश प्राप्ति के लिए विचारणीय है तुम लोगों को, मुमुक्षुओं को विचार सागर उपदेश प्राप्ति के लिए पढ़ना आवश्यक है। थोड़ा पढ़ो, इसमें से पढ़ना जरूरी है, देखो कितनी विशाल दृष्टि है इनके। सही मुमुक्षुता प्राप्त करनी है, पात्रता प्राप्त करनी है और मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तक पहुंचना है, तो इसकी जो पूर्व भूमिका जैसे होनी चाहिए यथार्थ, ऐसे यथार्थ भूमिका में आने के लिए भी एक कोई परिस्थिति चौकस है, नियत परिस्थिति है। जैसे मोक्ष मार्ग नियत है, वैसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए जो कुछ पूर्व भूमिका है वो भी नियत है, वास्तविक इसकी कोई परिस्थिति है, इसके लिए उनको ये सूचना दी गई है कि आप उनको पढ़ो, इस ग्रंथ को अवश्य पढ़ो। बात है ज्ञानी का सम्मत किया हुआ बात है, ऐसा नहीं कर ले मैं। तो ये अपना स्वयं का जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट करते हैं, और ये दृष्टिकोण हरेक मुमुक्षुओं को अपने विचार में स्पष्ट होना ही चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं हुआ तो ये अवश्य मतवादी हो जाएगा, मतवादी नहीं हुए और मध्यस्थ रह सके, इसलिए इस बात को यहां लिखी है। बहुत सुंदर बात है, जब हम जैन शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं, ये हमारी सूचना रहती है कि फलाना फलाना जैन शास्त्र पढ़ो, जब हम जैन शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं तब जैनी होने के लिए नहीं कहते। देखिए पहली बात जैन की, दूसरे मत की बात तो पीछे कहेंगे। पहले तो जिसका उसको आग्रह हो जावे, मतवादी हो जावे, उस पर प्रहार किया है कि जब हम जैन शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं तब जैनी होने के लिए नहीं कहते। जैनी होना नहीं है, जैनी नहीं होना तो क्या होना? कि न जैनी होना न अजैनी होना, आत्मार से केवल एक आत्मार से होना। इस भूमिका में तो ऐसी बात है, एक आत्महित को ही लक्ष्य में और मुख्यता में रख कर ही जो कुछ करना है वो करना है और कुछ नहीं करना है, उसको आत्मार्थ ही कहते हैं। ये जैनी, मैंने जैन मत वाला, ये बात लिखी है धर्मदास जी क्षुल्लक ने, कि मैं जैन मति नहीं हूं, मैं विष्णु मति नहीं हूं, मैं बौद्ध मति नहीं हूं, मैं फलाना मति नहीं हूं, सांख्य मति नहीं हूं। तो इसमें दूसरे दूसरे मत वाले का तो बात लिखा है क्योंकि सब अजैन है, लेकिन मैं जैन मति नहीं हूं ऐसा क्यों लिखा? खुद तो क्षुल्लक के बाह्य वेश में थे, क्षुल्लक के बाह्य वेश में तो मिथ्यात्व अवस्था से थे, शुल्क की दीक्षा तो मिथ्यात्व में ग्रहण कर ली थी, फिर बाद में तो आत्मज्ञान हुआ है। शुल्क का पंचम गुण स्थान होता है और पंचम में भी उत्कृष्ट भूमिका शुल्क की होती है, पंचम में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भूमिका होती है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान भी नहीं था जब दीक्षा ली तब, तो जब शुल्क हुए तब तो चौथा गुण स्थान भी नहीं था, पंचम उत्कृष्ट तो बहुत आगे की बात हो गई ना, बाद में तो ज्ञान हुआ है। पर जब आत्मज्ञान हुआ, चतुर्थ गुण स्थान हुआ, तब उन्होंने ये बात कही कि मैं जैन मति नहीं, मैं सांख्य मति नहीं, मैं वैष्णव मति नहीं, मैं बौद्ध मति नहीं। ये मत वालों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई ये परमार्थ के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में होती ही नहीं। चौदह गुण स्थान आत्मा नहीं। चौदह गुण स्थान तो बात रही जैन मत की, लेकिन एक परमार्थ को ही, आत्महित को ही यहां पर लक्ष्य में रखने की बात है। तत्व को ग्रहण करो, इसमें क्या अभिप्राय है कि तत्व को ग्रहण करो कि जिस तत्व को ग्रहण करने से अपना आत्महित हो होवे, उसी को ही ग्रहण करो। और उसमें से ये मत देखो कि ये किसने कहा, वो किसने कहा, किस ग्रंथ का वचन है, वो किस ग्रंथ का वचन है, ऐसा मत देखो। इसलिए नहीं देखने लायक है कि मूल बात तो आई है दिव्य ध्वनि में, और दिव्य ध्वनि में से कुछ किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने कुछ लिया, तो दिव्य ध्वनि का अवशेष तो हर जगह पड़े हैं। तो अध्ययन करने वाले की ये नजर होनी चाहिए कि इसमें सम्यक प्रकार से मुझे कैसे बोध मिलता है। कहीं भी बात लिखो, दिव्य ध्वनि का एक टुकड़ा तो है, इस टुकड़ा को मैं कैसे मेरे आत्महित में जोड़ सकता हूं, बस बात खत्म। ये अभिप्राय है इसमें। श्रीमद जी शुरू में लिखा है ना कि तुम कुछ भी किसी भी धर्म मत में हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं इसका। तो इसका यही कारण है कि शुरू से ही किसी को ऐसा बोल देवे कि तुम मिथ्या मत में पड़ा हो, तो उनकी तो वहां श्रद्धा है, पर श्रद्धा का स्थान एक ऐसा मर्म स्थान है कि वहां कोई स्पर्श करे तो उनको दर्द हो जाता है। तो उनकी जो शैली है वो ऐसी शैली है कि सामने वाले का इलाज करते वक्त भी उसको दर्द नहीं होने देवे, जहां तक हो सके वहां तक, ऐसी एक कार्य पद्धति उन्होंने अपने व्यवहार में रखी है, इसलिए ऐसी बात की है। इसका तो स्पष्टीकरण चलता है, जो प्रश्न है उसका ही स्पष्टीकरण आएगा कि जब हम जैन शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं तब जैनी होने के नहीं जैनी होने के लिए नहीं कहते, और जब वेदांत शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं, ये वेदांत का अनुसरण है, जो विचार सागर है वो वेदांती है, जो भी लिखने वाला है वो वेदांती है। जब वेदांत शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं तो वेदांती होने के लिए नहीं कहते। इस तरह अन्य शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं, इससे भी कोई अलग मत वाले को, तो अन्य होने के लिए नहीं कहते। मात्र जो कहते हैं वो आप सबको उपदेश लेने के लिए कहते हैं कि उसमें से आप अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को निर्दोष बनाने के लिए क्या बात ग्रहण करते हो, कैसा उपदेश ग्रहण करते हो, कौन सा उपदेश ग्रहण करते हो, अपना अवगुण को मिटाने के लिए और गुण प्राप्ति के लिए आपको कुछ मिलता है। तो ये इस नजर से ही पढ़ो, जो कुछ पढ़ो वो उसी नजर से पढ़ो, फिर किसी भी शास्त्र पढ़ने में आपको कोई आपत्ति नहीं। अगर ये नजर नहीं रही तो जैन शास्त्र पढ़ने में भी तुमको कौन सी आपत्ति आ जाएगी भगवान जाने। तो उसमें जो मुद्दा है वो उतना रहा कि जो भी शास्त्र पढ़ना है, जो भी साहित्य पढ़ना है, उसमें नजर एक चाहिए कि मेरा आत्महित कैसे होता है, मेरा अवगुण का कैसे नाश होता है, मुझे निर्दोषता कैसे मिलती है, फिर कहीं से भी पढ़ो कोई आपत्ति नहीं। अगर ये नजर नहीं है तो आप जैन शास्त्र पढ़ो, कुछ भी शास्त्र पढ़ो, इसमें से कौन सा ऊंधा अभिप्राय निकालोगे और कौन से ऊंधी लाइन में चढ़ जाओगे तुमको खुद को ही पता नहीं पड़ेगा, ये बात हो जाएगी। क्योंकि जैन शास्त्र में भी निश्चय प्रधान भी बात है, व्यवहार प्रधान भी उपदेश है, निश्चय प्रधान भी उपदेश है। या तो निश्चय आभासी हो जाओगे, व्यवहार आभासी तो अनादि से हो ही है ही जी। जब उनको ये नजर नहीं मिली तो कोई भी शास्त्र पढ़े उनके लिए तो नुकसान का ही नुकसान का कारण है। देखो, एक विचार सागर पढ़ने की सूचना करी है। उस सूचना में से जो कुछ कहना है वो इस तरह कह दिया है, कितने जबरदस्त बात किया है। आग्रह नहीं, उसमें दो बात हो जाएगी कि ये बात तो ठीक की है लेकिन वो बात इससे विरुद्ध चलती है, तो एक ही ग्रंथ में पुरवार पर विरुद्ध बात आ जाएगी, वो ख्याल में आ जाएगी। इसलिए वो कहेंगे कि जो शास्त्र रचयिता है वो ज्ञानी तो नहीं है, कुछ ज्ञानी के शास्त्र में से कोई बात उठा ली है वो इधर रखिए, बात ठीक है, बाकी पुरवार पर अविरोध बात नहीं आती है, तो उसको आग्रह नहीं होगा इस ग्रंथ का। उसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि जो भी ज्ञानियों के, मुनियों के, भावलिंगी मुनियों के, आचार्यों के जो शास्त्र है वो शास्त्र सम्यक प्रकार से अवगाहन करने योग्य है, अध्ययन करने योग्य है, उसमें तो कोई दूसरा मत दो अभिप्राय नहीं है इसमें। लेकिन इसमें से कोई मतवादी होता है तो नुकसान होता है। क्या इसमें से जो कोई मतवादी होता है तो वो अवश्य अपने आप को नुकसान करता है। शास्त्र है जो सम्यक ज्ञानी का, वो तो शास्त्र में कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है, वो कृति बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि वो सम्यक ज्ञान रूप जिसमें निमित्त है ऐसा नैमित्त परिणामों से नैमित्तिक परिस्थिति इस शास्त्र की हुई है, तो उसमें तो कोई दोष नहीं। लेकिन पढ़ने वाले को ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सत्शास्त्र पढ़े इसलिए नुकसान होवे ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जैनाभाषी का प्रकरण लिखने को टोडरमल जी को कोई आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने सातवां अधिकार जैना भाषियों का लिखा, तो और भगवान के दिव्य ध्वनि सुनने वाले का सबका मोक्ष हो जाता क्योंकि प्रत्यक्ष सुनाई देते हैं तीर्थंकर। ऐसा होता नहीं, कभी होता नहीं, और ऐसा होता तो संसार की ये हालत नहीं होती, कभी के सारा संसार का मुक्ति हो जाते। लेकिन ये बात तो है नहीं, वास्तविकता इसमें है ही नहीं कोई, तो बात तो यहां से देखनी है, शास्त्र से बात नहीं सोचनी है, बात तो पढ़ने वाले से सोचनी है। किसको पढ़ना नहीं पढ़ना ये मुद्दा नहीं चलता है, मुद्दा ये चलता है कि पढ़ने वाले की हालत क्या है और कैसे होनी चाहिए, इसकी चर्चा है, इसकी योग्यता है क्या है, इसकी भूमिका क्या है, कि ये मतवाला हो जाएगा या मध्यस्थ रहेगा। श्रीमद् जी का खुद का ये अभिप्राय है कि आत्मार्थी मुमुक्षु मोक्षमा मोक्षार्थी जीव एकदम वास्तविक मार्ग तक पहुंचे, वहां तक जो भी उसको उपदेश की प्राप्ति करनी है उसमें कहीं भी वो ऐसी पकड़ में नहीं आ जावे कि वास्तविक मार्ग तक पहुंचे ही नहीं। दो दो टुकड़ा किया ना, उपदेश प्राप्ति का मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग। तो जो कोई मुसीबत है ये उपदेश प्राप्ति के मार्ग में है, मोक्ष मार्ग में, वास्तविक मार्ग में कोई इतनी मुसीबत नहीं है, क्योंकि वास्तविक मार्ग में तो सम्यक ज्ञान रूप एक प्रकाश हाथ में है ज्ञान का, भले ही चौथा गुण स्थान हो, पांचवा हो, छठा, सातवां हो, कोई भी गुण स्थान हो, लेकिन उसमें तो वो अंधेरे में नहीं चलता है, उसके हाथ में ज्ञान का प्रकाश है, तो जहां भी चलेगा वो देख सोच समझ कर पांव रखेगा क्योंकि उसके पास तो प्रकाश है, तो उसमें कोई इतनी मुसीबत नहीं है। मुसीबत तो वहां है कि जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं और अज्ञान के अंधेरे में जंपिंग करता है जीव, कभी इधर खुद का लगाता है, कभी इधर खुद का लगाता है, कभी इधर जाता है, किसी को भी उधर जाता है, उसको मुसीबत सब प्रकार की होती है। पर इस मुसीबत के हिसाब से वो कभी अनंत काल तक अपना हित नहीं साध सकता है, यही परिस्थिति में आ जाता है। अनंत काल निकला है इस जीव का, यही कारण है इसका कि ये भूमिका में ही उसने गोता खाया है। जितना गोता खाया ये भूमिका में ही खाया है, मार्ग पर, वास्तविक मार्ग पर पहुंचा ही नहीं। एक दफे पहुंचे तो निबेड़ा हो जाता है। ये तो मार्ग की सुंदरता है कि एक दफे मार्ग हाथ में आ गया तो उसका तो हमेशा का फैसला हो गया, लेकिन मार्ग में ही नहीं आता, मार्ग तक पहुंचता ही नहीं। तो इसलिए इस मुसीबत में से बचाने के लिए, इस तकलीफ में से बचाने के लिए एक बहुत कीमती महामूल्यवान मार्गदर्शन है कि तुम कहीं मंडन खंडन में जाना ही नहीं। कब मत का मंडन खंडन करना, ये आचार्यों का अधिकार की बात छोड़ करके उनका अधिकार तू क्यों अभी ले लेता है? अनधिकारी है अभी तू तो कौन है? तो आचार्य है, जिसके हाथ में शासन हो, जो जैन शासन की धुरा वहन करते हो, ऐसे जो आचार्य होते हैं उनका जो अधिकार है, इस अधिकार को तू जुटा लेता है, ये क्या करता है? गड़बड़ी है, तेरा तो कुछ ठिकाना नहीं है, क्या करता है तू? तो उसको तो वैसे मुमुक्षुओं का जो अधिकार नहीं है वो काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिस काम का अधिकार न हो इस कार्य हाथ में लेने से क्या फायदा? तो उसको तो ज्ञानी के आज्ञा से जो भी करना है कर लेना चाहिए। थोड़ा भाव आता है बाह्य वृत्ति का, शासन की प्रभावना का, तो ज्ञानी की आज्ञा से कर लेना चाहिए। इससे आगे अपना अधिकार नहीं दिलवाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, तो बच जाएगा। वरना तो अनंत काल से गोता खाया है, गोता खाता रहेगा, यही बात होगी। इसलिए हम बचाया है। तो अन्य मत का शास्त्र का पढ़ने की सूचना की है, पर मुद्दा ये निकाला है कि तुमको कभी भी मत के मंडन खंडन में जाना नहीं है। मात जो कहते हैं वह आप सबको उपदेश लेने के लिए कहते हैं। जैनी और वेदांती आदि के भेद का त्याग करें, भेद का मैंने इस मतार्थीपणा का त्याग करें। मतार्थी वो आत्मार्थी नहीं होते, और आत्मार्थी है सो मतार्थी कभी नहीं होते, बस ये बात ख्याल में रखना। आत्मा वैसा नहीं है, न आत्मा वेदांती है न आत्मा जैनी है, आत्मा तो जैसा है वैसा है, न शुद्ध है न शुद्ध है, जैसा है वैसा है, उसको देखो और उसको देखने का प्रयास करो। बाकी ये मत के मुंडन खंडन में अभी से जो चले जाते हैं उनको कहाँ कितना अभिप्राय का दोष होता है, और कहाँ वो मार्ग का और मार्ग प्राप्त सत्पुरुष का भी अवरणवाद कर लेता है, उसको खुद को ही पता नहीं रहता। अपन वर्तमान परिस्थिति का विचार करें तो अब दो बड़े संप्रदाय हैं अपने, चालू संप्रदाय को छोड़ करके लेवे तो एक ये श्रीमद जी के अनुयायी काफी मात्रा में इसकी संख्या है, दूसरे गुरुदेव के अनुयायियों के भी काफी मात्रा में संख्या है। अभी एक उसका एक इस दृष्टिकोण से थोड़ा इसका विचार करें तो अपन लोग मंडन खंडन के बात में बहुत आ जाएंगे, वो लोग नहीं आएंगे, वो इतने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो शिक्षा ही मिलती है कि मंडन खंडन में तो इस वो बात से दूर रहना है हमें, तो उसमें भी वो सही नहीं रहे तो उसमें सत्य का और असत्य क्या उसका निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत दूर रहते हैं उससे। तो ये नुकसान कर दिया अयथार्थता के कारण। यथार्थता हो तो ऐसा नुकसान नहीं होता, पर यहां ये सत्य है और ये असत्य है ऐसा करने में मंडन खंडन में आ जाता है। तो खुद श्रीमद जी एकावतारी पुरुष है, इसके विषय में कोई गलत बात बोल देते हैं, बोल देते कि नहीं बोल देते। तो एक सत्पुरुष का निषेध किया, अनंता सत्पुरुष का निषेध किया और देवगुरु शास्त्र सब इसमें आ गया, सबका निषेध हो गया तीन कारणों का भयंकर अपराध है। बहुत सावधान, जहां अपना अधिकार नहीं है, जो आचार्यों का अधिकार है अपन खुद उसको हाथ में ले ले गए इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट खुद अपराधी गुनेगार खुद ही जजमेंट लिखने जावे तो क्या होगा, यही हालत है हम लोगों में। ये परिस्थिति में कितनी सावधानी इस विषय में होनी चाहिए, इसका निर्देश है एक छोटे से इस पत्र में। यहां तक रखे Thank you.